ओम शांति। आप सभी क्लास सुन सुन के थक गए हैं या फ्रेश हुए हैं? ठीक है, क्योंकि जो दूसरों को क्लास कराते हैं वो उनको ज्यादा क्लास सुनने की होती है इच्छा या नहीं, इसलिए भी होनी चाहिए कि और अच्छे से अच्छे क्लास कराए जा सके। और ज्ञान तो इतना सूक्ष्म है, सागर की तरह विशाल है, कि एक ही प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं। और आप सभी के पास जो बाहर से आत्माएं आती हैं, उनके प्रश्न अलग अलग होते ही हैं, तो गुह्य से गुह्य उत्तर अच्छी ज्ञान की गहराई होनी चाहिए हम सबके पास, ताकि आने वालों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जा सके। तो बहुत अच्छी इच्छा है ये बहुत कुछ जानने की, क्योंकि भारत में हमारे पास जो लोग ज्ञान लेने आते हैं वो भिन्न भिन्न मान्यताएं रखने वाले होते हैं। एक हिंदू धर्म में ही अनेक मान्यताएं रहती हैं, तो सूक्ष्मता हर चीज की हमें मालूम होनी चाहिए। पहले मैं एक प्रश्न लेता हूं जो जैन धर्म के बारे में पूछा जाता है। जैनी लोग अपने कल्प वृक्ष के चित्र को देखकर ये पूछते हैं कि हमारा धर्म इसमें क्यों नहीं दिखाया गया है। तो कुछ बहने भाई तो बहुत हंसी में उत्तर दे देते हैं कि ये कल्प वृक्ष का आगे का हिस्सा है और पीछे के हिस्से में आपका भी एक शाखा है। परंतु ये तो है काम चलाने वाला उत्तर। रियल उत्तर ये है, जैसे कल्प वृक्ष में हिंदू धर्म नहीं दिखाया गया है, आप सब जानते हैं क्यों? क्योंकि देवी देवता धर्म का ही वो परिवर्तित नाम है, स्वरूप है। इसी तरह त्रेता समाप्त होने पर वही धर्म कुछ शाखाओं में विभाजित हो गया, उसमें से एक शाखा जैनिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुई। जैन वास्तव में कोई धर्म नहीं था, ये एक रास्ता था, एक मार्ग था मनुष्य आत्माओं को जितेंद्रिय बनाने के लिए। जैन शब्द का अर्थ है जितेंद्रिय होना, जिनसे ये शब्द बना है, जिनसे जैन बना, जिन अर्थात जितेंद्रिय। इसलिए जैनी लोग, जैसे हम लोग आपस में मिलते हैं तो ओम शांति बोलते हैं, वो जय जिनेंद्र बोलते हैं, एक दूसरे को याद दिलाते हैं इंद्रिय जीत बनो। और जितनी भी उनकी मान्यताएं हैं, फिलोसोफी है, स्वर्ग के बारे में वर्णन है, मुक्ति के बारे में चर्चा है, वो बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसलिए मैं हमेशा जैनियों को कहता हूँ, आप सभी को मालूम हो हमारे ज्ञान में जैन परिवार बहुत आ चुके हैं, बहुत आए हैं, हैं जो अब, तो मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि पूरा ही जैन धर्म देवी देवता धर्म की शाखा होने के कारण बाबा का बच्चा बन जाएगा, क्योंकि बहुत समीपता है। तो इसलिए क्योंकि वो अलग धर्म नहीं है और वो किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए कल्प वृक्ष में उसको नहीं दिखाया गया। लोग जो कह देते हैं कि स्वामी महावीर ने जैन धर्म स्थापित किया, ऐसा नहीं है, वो तो जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर थे। उसे पहले वो मान्यताएं चलती आ रही थी और वो वास्तव में देवी देवता धर्म की ही मान्यताएं थी, अलग न होने के कारण इसको अलग दिखाया नहीं गया है। एक हंसी का प्रश्न पूछा गया है कि कुछ भाई बहने ऐसे होते हैं जो सबसे पहले क्लास में आते हैं, आगे बैठते हैं, बैठते ही सो जाते हैं, मना करने पर भी सोते हैं, बहुत युक्तियां अपनाई गई लेकिन वो सोते हैं, क्या किया जाए? पहले तो उनकी लगन के लिए मुबारक कि वो सबसे पहले क्लास में आते हैं, आगे बैठते हैं इस इच्छा से कि उन्हें नींद ना आए, इच्छा उनके अंदर अवश्य है, तब वो आगे आके बैठते हैं। ये प्रश्न पढ़ते ही मुझे याद आया, जब मैं छोटा था और रजौरी गार्डन दिल्ली में रहता था, तो तो श्यांतामणि दादी वहां टीचर थी, तो जिन माताओं को नींद आती थी उनको वो खड़ी कर देती थी पीछे दीवार के पास। तो माताएं तो नींद की इतनी महारथी थी कि खड़े खड़े ही सो जाती थी। सोचा क्या किया जाए इनका, बैठ के भी सो गई, खड़े होके भी सो गई। किसी को योग में नींद आती है, किसी को मुरली में आती है, दो विभाग किए जा सकते हैं सोने वालों के। कुछ लोगों को योग में नींद नहीं आती लेकिन मुरली चलते ही नींद आने लगती है, और कुछ को मुरली में नहीं आती, योग में आती है। नींद आने के कई कारण होते हैं, क्योंकि आप सबके सामने ये प्रैक्टिकल समस्या आती है। किसी किसी की आपकी भी होगी, लेकिन स्टूडेंट्स की तो बहुत आती ही है। हमें पहले ये जानना चाहिए, जानना होगा कि जिस व्यक्ति को नींद आ रही है क्यों, योग में अगर नींद आ रही है तो क्यों, मुरली के समय नींद आ रही है तो क्यों। कुछ शारीरिक बीमारियां भी ऐसी हैं जिनके कारण मनुष्य को नींद आती है, उसमें से सबसे बड़ी बीमारी है पेट की खराबियां। जिसको भी पेट खराब होंगे उन्हें योग में सोना ही है, इसलिए पेट का इलाज कराना चाहिए। जिसको डायबिटीज होगी, आप जानते होंगे डायबिटीज, वैसे जिनको नहीं है उन्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। शुगर आजकल बहुत फेमस बीमारी के रूप में चलती है। शुगर शरीर को कमजोर कर देती है और अच्छे अच्छे व्यक्ति को नींद आ जाती है। तो इन सभी का समाधान कुछ स्थूल और कुछ सूक्ष्म। इलाज तो कराना ही चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को आप सिखाएंगे कि वो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेज करें, थोड़े थोड़े व्यायाम करें। योगा थेरेपी जो शारीरिक योग हैं, उनमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई जाती है नींद ना आए, और वो है गहरी सांस लेना, गहरी सांस भरना फिर निकालना, लंबी लेना, लंबाई से निकालना, 3-4-5 सेकंड में लेना, ऐसे निकालना 10 बार अगर ऐसा करते हैं तो ब्रेन खुल जाता है। जरा नींद आने के जो सूक्ष्म कारण हैं वो आप सब जानते होंगे बहुत अच्छी तरह। किसी को बुरा न लगे तो मैं फिर से कह दूं, वैसे आप जानते होंगे जिस आत्मा के सिर पर पापों का बहुत बोझ है उसे नींद आती है, जिसके जीवन में खुशी नहीं रहती, सफलता नहीं मिलती, उसे भी नींद आती है। ब्राह्मण बनने के बाद जिनसे सूक्ष्म पाप होते हैं उन्हें भी बहुत नींद आती है। जो अच्छी तरह सो नहीं पाते, रात को बार बार आंख खुलती है, उन्हें भी नींद आ जाती है। जिनका ज्ञान का चिंतन नहीं चलता, योग की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, उन्हें भी नींद आ जाती है। अब जैसी जैसी परिस्थिति, जैसा कारण, उस तरह से उनका निवारण करना चाहिए। मैं बहुतों को ये सजेस्ट किया करता हूँ कि मुरली के समय यदि नींद आती है तो वो मुरली की अधिक से अधिक पॉइंट्स लिखें। ऐसे ही लिखें कि सारी मुरली लिखनी है हमें, कुछ दिन ऐसा अटेंशन देने से, जब लिखेंगे तो सुनने में बहुत अटेंशन देंगे, लिखेंगे, पहले कुछ मिस होगा कुछ लिखेंगे, लेकिन नींद से तो अच्छा रहेगा। एक ये प्रैक्टिस आप उन्हें करा सकते हैं। दूसरे क्लास में जरा पूछा जाए प्रश्न, बार बार उनसे भी पूछ लिया जाए तो उसको लज्जा भी आती है व्यक्ति को, और थोड़ी चुस्ती भी हो जाती है। इसमें कुछ लज्जा किया, हमें लज्जा किया, घबराने की बात नहीं। उनके कल्याण के लिए थोड़ा थोड़ा पूछा जाए, उन्हें डांटा ना जाए कि तुम क्लास में क्यों सोते हो, तुम यहाँ सोने आते हो क्या, घर सो लिया करो, अपने बिस्तर पे सो, यहाँ क्यों आते हो, ऐसी जरूरत नहीं। उनकी भावनाओं को हम समझते हैं, इसलिए हमारा काम है उन्हें अच्छी तरह मदद करना, योग उन्हें सिखाना है भिन्न भिन्न तरीकों से, ताकि वो कर्म करते हुए चलते फिरते योग अभ्यास करें, तब बैठकर भी उनका योग अच्छा हो सकेगा। और योग में अच्छे अनुभव तभी होते हैं जब योग अभ्यास करते हुए हम एक अच्छी विजन बना लेते हों, एक अच्छा चित्र बना सकते हों। जैसे हमें स्वर्ग का अनुभव करना हो तो स्वर्ग का एक अच्छा चित्र हमारे सामने हो। यदि चित्र ही न हो तो चिंतन से अनुभव नहीं होगा। योग में भिन्न भिन्न विजन और बहुत क्लियर विजुअलाइजेशन, बहुत क्लियर दिखना, ये योग की सफलता है। ये प्रश्न एक आया है कि हम सोचते हैं मैं आत्मा भ्रकुटी पर सिंहासन पर विराजमान हूँ, इसके लिए क्या विजन बनाया जाए। तो विजन बिल्कुल सिंपल है कि आत्मा चमकती हुई ज्योति है और उससे चारों ओर किरणें फैलती हैं। आप ऐसा विजन भी बना सकते हैं कि 10 सेकंड के लिए उससे शांति की किरणें फैल रही हैं, 10 सेकंड के लिए पवित्रता की, 10 सेकंड के लिए शक्तियों की। मैं एक छोटा सा गेम सिखाया करता हूं जिनका योग नहीं लगता उनको, और ऐसा देखा गया है कि इस छोटी सी ड्रिल से योग अच्छा लगने लगता है। वो पहले मैं शुरू कराता हूँ 5-5 सेकंड से, क्योंकि लंबा समय एकाग्रता संभव नहीं होती। 5 सेकंड आत्मा के स्वरूप को देखना, फिर 5 सेकंड बाबा के स्वरूप को देखना परम धाम में, फिर 5 सेकंड आत्मा को, 5 सेकंड बाबा को, 10-10 बार ये कर लिया जाए। फिर इसको 10 सेकंड करें, 10-10-10-10, तो धीरे धीरे एकाग्रता होती है और नींद भी खत्म हो जाती है। दोनों फायदे इसमें होंगे। कुछ प्रश्न बहुत सुंदर हैं और बड़े भी हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। मैं कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखूं। कुछ लोगों के पास रिद्धि सिद्धियां होती हैं लौकिक में, वो ज्ञान में आ जाते हैं तो यहाँ प्रयोग करने लगते हैं, बहनों पे भी कर देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस देखने सुनने में आते हैं कि ईर्ष्यावश बदला लेने के लिए किसी के कहने से अपनी किसी भी सिद्धि का प्रयोग किसी बहन पर कर दिया और बहन को परेशानी होने लगी, नींद नहीं आती, खुशी नहीं रहती, योग नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है। मैं आप सभी को ये बात बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं मेरे साथ पास क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं और मैंने बहुतों को इन चीजों से मुक्त कराया है बाबा के योग से, स्वमान से, मैं वो सब बातें 5 मिनट में आपके सामने रख दूं। इन तंत्र मंत्र रिवील सोल्स की शक्तियों से कहीं ज्यादा शक्ति हम सबके पास है, ये हमें विश्वास होना चाहिए। पहले ही हम अपने को तैयार कर दें कि संसार की कोई भी इविल पावर हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। इस संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। इसके साथ ये भी जोड़ दें, क्योंकि हमारे साथ भगवान है इसलिए तंत्र मंत्र और भटकती आत्माएं हमारा कुछ नहीं कर सकती। इससे आपके अंदर का भय निकल जाएगा। सबसे बुरी चीज भय है। भय से क्या होता है? बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी, बहुत सूक्ष्म गति हम सभी जान लें। भय से क्या होता है? हम डर गए तो दूसरों के वाइब्रेशंस हमारे अंदर तेजी से प्रवेश करने लगेंगे, ग्रहण कर लेंगे हम तेजी से निगेटिविटी को, कमजोरी को, दूसरों के व्यर्थ के संकल्पों को। और यदि हम नहीं डरे तो हमारे शक्तिशाली संकल्प उनकी सभी चीजों को वापस कर देंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं, आपने सुना होगा, कुत्ता भौंकने लगा आपको, आप भागने लगो, क्या करेगा कुत्ता? आपका पीछा करेगा। आप सोचो मुझे कुत्ते को दृष्टि देनी है, खड़े हो जाओ डट के, कुत्ते को दृष्टि दो, कुत्ता भागेगा वापस। चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना अगर आपको डर न लगता हो। ये भय और निर्भयता का प्रैक्टिकल स्वरूप है, डरने की बात नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे इविल सोल से, क्योंकि हम सभी को इन सब आत्माओं की मुक्ति भी करनी है, मुक्ति देनी है हमें इन सबको। कई लोग ये पूछते हैं, आज नहीं पूछा पर हमसे बहुत पूछते हैं कि शिव बाबा के होते हुए बाबा की सभा में भी इविल स्पिरिट्स क्यों आ जाती हैं? देखा है ना, सबके सामने आ जाती हैं बड़े हॉल में। हम सभी को ये मालूम हो कि इविल सोल्स को मुक्ति देने का ये जो एक क्षेत्र है ये शिव बाबा से नहीं जुड़ा हुआ है, भगवान से नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ है शिव शक्तियों से। भक्ति में भी जिनको ये सिद्धियां लेनी वो भगवान से नहीं, शक्तियों से, इसलिए ये शक्तियों के पास आती हैं। तो शक्तियों को डरना नहीं है। हम सभी बहुत अच्छा अभ्यास करें, मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं एक छोटी सी विधि आप सबको बता दूं, आप रोज भी कर सकते हैं, अपने सेंटर में कर सकते हैं। रिजल्ट आपको मिलेगा इस बात पर कि आप कितना अच्छा अभ्यास करते हैं सारे दिन में इसका, कि मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सिंपल इसका अभ्यास है। आप अपने को ऐसे स्वरूप में ले आए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और मेरे सिर पर शिव बाबा छत्र है। अपने को इस स्वरूप में स्थित कर दें, छत्र के नीचे मैं बैठी हूँ और मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। रंग भी आप दे सकते हैं, लाल किरणें फैल रही हैं। आप अपने सेंटर में कहीं भी योग में बैठे बाबा के रूम में या क्लास रूम में और ये अभ्यास करें कि मुझसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। और फिर अभ्यास कर दें, सोने से पहले करना है ये विशेष। जैसे ये शक्तियों की किरणें हमारे पूरे सेंटर के चारों ओर रेखा खींच रही हैं, सात बार खींच सकते हैं आप। आप कहेंगे सात क्यों, इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन ज्योतिष में और इन सब विद्याओं में सात का बड़ा महत्व है। वैसे एक बार भी आप मन से रेखा खींच दो शक्तियों की रेखा और संकल्प करो कि इस रेखा के अंदर कोई इविल सोल, कोई भूत प्रेत, कोई चोर डाकू, कोई खराब आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं करेगा। वहां आते ही उसके संकल्प बदल जाएंगे। मैंने ये प्रयोग किए हैं खुद और बहुतों को सिखाए हैं, संपूर्ण सफलता होती है इसमें। इसलिए आपके सेंटर्स में यदि कभी ऐसा हो जाए तो आप शिव शक्ति स्वरूप से उसको समाप्त कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को हो जाए उसको भी आप सिखा दें। यदि वो कुछ भी अभ्यास नहीं कर पाते, मैंने ऐसे प्रयोग कराए हैं कुछ लोगों से कि जब ऐसा इफेक्ट बहुत बुरा हो जाता है तो मनुष्य कुछ कर नहीं पाता, अपनी बहनें या भाई भी योग भी नहीं कर पाते, तो मैंने उनको सिखाया कि तुम एक घंटा सवेरे एक घंटा शाम केवल मैं शिव शक्ति हूँ इसको रिपीट करो। एक घंटा रिपीट करने से उनके अंदर जैसे चेतना आ गई और फिर योग अच्छा लगने लगा। ऐसा भी आवश्यकता में अभ्यास कराया जा सकता है। बुद्धि परम धाम तक नहीं पहुंचती, क्या करें? पेट्रोल रिफाइन करना पड़ेगा ताकि हमारा प्लेन तेजी से उड़े। विजुअलाइजेशन नहीं होता, फीलिंग नहीं होती, केवल चिंतन रहता है। क्या इसका भी महत्व है? चिंतन का महत्व तो है, पर यदि हम प्रैक्टिकल में ऐसा फील करें कि मैं आत्मा उड़ती उड़ती परमधाम पहुंच गई, तो इसका विशेष अनुभव ही नहीं, इससे हमें बहुत अच्छी प्राप्तियां भी होंगी। क्यों ऐसा नहीं होता? कारण है क्योंकि ये उड़ने का काम करती है बुद्धि, और बुद्धि यदि रिफाइन नहीं है, बुद्धि के कई स्वरूप हैं, बुद्धि रिफाइन, बुद्धि प्योर, बुद्धि शक्तिशाली, बुद्धि निर्मल, ये बुद्धि के स्वरूप हम दे सकते हैं। यदि हम किसी की बुद्धि रिफाइन नहीं है तो वो परम धाम तक नहीं जाती। इसलिए जिसको अपनी बुद्धि को तीनों लोकों के अच्छे अनुभव कराने हो, उसे बातों से मुक्त रहना चाहिए। यदि आप पूरा जीवन ऐसा नहीं कर सकते तो 15 दिन के लिए अवश्य करके देख लें, बातों से मुक्त, अंतर्मुखी हो जाएं, थोड़ा थोड़ा समय मौन अपना लें, बातों से मुक्त रहने से बुद्धि बहुत सारी व्यर्थ से मुक्त रहेगी, तब विजन क्लियर बनेगी और अच्छे अनुभव होंगे। ये समस्या बहुतों की है, विजन क्लियर इसलिए नहीं बनती, स्टूडेंट्स के लिए भी आप सबको जानना चाहिए, विजन क्लियर न बनने का कारण बुद्धि शक्तिशाली नहीं है। क्यों नहीं है हम सब जानते हैं, पाप ने, विकारों ने, व्यर्थ चिंतन ने बुद्धि को कमजोर किया है। इन सब चीजों से मुक्त रहने से धीरे धीरे विजन बहुत क्लियर बनती है। एक बड़ा हंसी का अच्छा सा और खराब सा प्रश्न है, एक ही प्रश्न में सारी बातें हैं कि सभी धर्म चार स्थिति से गुजरते हैं, क्या ब्राह्मण धर्म भी तमो प्रधान स्थिति से गुजर रहा है? इसलिए मैंने इसको खराब सा कहा, जानकारी के लिए बहुत अच्छा भी है ये। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण तमो प्रधान हो गए हैं? ब्राह्मण तमो प्रधान क्यों हो गए? ब्राह्मण तो श्रेष्ठ हैं, ये शब्द ब्राह्मणों के लिए है ही नहीं। तो वास्तव में ब्राह्मण धर्म देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने का कार्य कर रहा है ना, इसलिए ये चारों स्थितियों से गुजरता है। शुरू में सतो प्रधान स्थिति थी और अंत में तमो प्रधान होगी, ये माना नहीं जा सकता, क्योंकि अंत की हमारी स्थिति तो संपूर्ण होगी, कर्मातीत होगी, साक्षात्कार होंगे, हमको भी होंगे और हमसे सारे संसार को होंगे, बाबा की जय जयकार कराने के आप सब निमित्त बनेंगे, तो उस स्वरूप को तमो प्रधान नहीं कहा जा सकता। न पहले स्वरूप को तमो प्रधान कहेंगे, न अंतिम स्वरूप को, हम तो बीज डाल रहे हैं। किसी की स्थिति खराब होती है उसका अर्थ तमो प्रधानता नहीं, ये तो हरेक के कर्मों का हिसाब किताब पूर्ण हो रहा है। आप सभी को मालूम, याद रहे, मालूम तो है, बाबा ने बहुत बार ये बात कह दी है। मैं सोचा करता हूं जब कोई ऐसी बात पूछते हैं, एक और ऐसा ही प्रश्न है कि कई लोग, उसने जरा घुमा के लिख दिया है, सीधा नहीं लिखा, सोचा होगा कि कोई सुनने वाला क्या कहेगा, पर मतलब ये है कि यज्ञ में पॉलिटिक्स चलती है, ये बड़ी खराब बात है। मैंने लिखा है कि कोई बाहर से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है तो यहाँ भी वही काम करता है, ये सब ठीक है, क्या किया जाए ऐसे में। तो करने कराने वाले हम सभी है ना, कोई और तो नहीं ना, हम एक दूसरे के लिए ही ऐसा सोचते हैं, कहते हैं। बाबा ने बहुत स्पष्ट कर दिया, ये अंतिम समय जहाँ श्रेष्ठ अनुभवों का समय है, वहीं सबके हिसाब किताब पूर्ण होने का भी समय है, इस बात को हम भूले नहीं। कई लोग मुझे भी आके कहा करते हैं, यज्ञ में क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है इन सबको, बड़े आश्चर्य से। मुझे तब तुरंत दो बातें याद आती हैं, एक तो बाबा ने कहा, ज्ञानी आत्माएं आश्चर्यवत होकर भी नहीं सोच सकते, क्योंकि उन्हें पता है जो कुछ हो रहा है वो संपूर्ण सत्य है, वही होना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने उत्तर दिया है कि तुम जो कुछ यज्ञ को देखकर सोचते हो, क्या बाबा ये सब नहीं देख रहा है? जो मालिक है, जिसको संसार बदलना है, जो संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है, वो भी तो देख रहा है, तो वो कुछ नहीं करता? सोचने की बात है, क्या वो कुछ नहीं करता होगा? वो करता है, जहां सत्यता है, जहां पवित्रता है, जहां योग श्रेष्ठ है, जहां निश्चय श्रेष्ठ है, वहां उसकी मदद है ही। जहां मनुष्य इन सबको भूल कर तेरे मेरे में अटक गया है, ज्ञान की गुह्यता को भूल गया है, लक्ष्य को भूल गया है, वहां उसे कठिनाई हो रही है। इसलिए हम अपने कर्तव्य भी करते चलें, साक्षी भी होकर चलें, और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने को व्यर्थ से बचाकर चलें। किसी की पॉलिटिक्स सत्यता के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। मैंने प्रैक्टिकल बहुत सारे केस देखे, हमारे पास ही आ जाते हैं केस, कि असत्यता को सब साथ दे रहे हैं। व्यक्ति घबरा गया कि मैं तो सत्य हूँ, मेरी तरफ कोई नहीं, सारे लोग असत्यता की तरफ हो गए हैं, क्योंकि वो असत्य व्यक्ति तेज है, चालाक है, उसने सबको अपनी बात समझा दी है और ऐसे ढंग से समझा दी है कि मेरी सत्यता को कोई सुन नहीं रहा। उत्तर वही होता है, मैं भी वही दे रहा हूँ कि असत्यता की ओर सारा संसार हो, लेकिन सत्यता की ओर स्वयं भगवान है। और हमने ये देखा, जीत सत्यता की ही होती है, इसलिए इन सब बातों से हमें ऊपर उठ जाना है। क्लास के धारणा युक्त भाई बहनों पर इविल सोल का प्रभाव हो जाए तो हमारा क्या कर्तव्य है? बहनों को सहयोग देना ही चाहिए बिना डरे। बहुत जगह बहनें सहयोग दे रही हैं। अभी अभी एक जगह एक बहन को इसका प्रभाव हो गया, बाकी बहनों ने इतनी मदद उसको की कि वो बहन इस प्रभाव से मुक्त हो ही गई। रात को 12 बजे उस पर ये प्रभाव होता था, 3 बहनों ने प्रोग्राम बनाया कि हमें रात को 12 से 2 बजे तक ही योग करना है, और योग किया सभी ने। प्रश्न के लिए तो सारी रात चाहिए। योग किया बहनों ने रात को 12 से 2, और तब तक योग किया जब तक सोल ने आना बंद नहीं कर दिया। तो आप एक अच्छा ग्रुप बनाकर, कम से कम 8 भाई बहने हो तो बहुत अच्छा है, 1 घंटा रोज सवेरे शाम कभी भी अच्छा योग करेंगी तो ऐसे भाई बहनों से ये जो प्रकोप होता है बहुत बुरा, ये समाप्त हो जाएगा। ये हमारा कर्तव्य भी है। दूसरा हंसी का और अच्छा सा और कैसा कहूं तीसरा शब्द प्रश्न आया है। बाबा ने कहा कि मैंने ब्रह्मा का तन ही मुकरर किया है, फिर गुलजार दादी के तन में क्यों आता है? भाई ये भी तो बाबा ने ही कहा कि मैं गुलजार दादी के तन में आऊंगा, तब गुलजार दादी के तन की जरूरत नहीं थी, ब्रह्मा बाबा यहाँ थे तो कहा ये मेरा तन मुकरर है, फिर उनके शरीर छोड़ने के बाद कहा ये मेरा तन मुकरर है, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। कोई भाई बहुत समय से आता है, धारणाओं में भी है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए? हमेशा ही सभी बहनों के लिए, टीचर्स बहनों के लिए ये परखना और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस व्यक्ति की उन्नति किस तरह हो सकती है। हम यदि किसी को यही कहें कि तुम बैठ के योग लगाओ, ये सबके लिए संभव नहीं। एक ही सिद्धांत सभी लोग संपूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये देख लेना चाहिए किसकी उन्नति कैसे होगी। मेरे पास भी ऐसे रोज ही 2-4 भाई बहने आते हैं। मैं किसी को, 1-2 व्यक्तियों को मैंने एक छोटा सा अभ्यास कराया है पीछे। अभ्यास ये है, उसका बिल्कुल योग नहीं लगता, बिल्कुल कठिनाई होती है, तो मैंने उसे कहा सारा दिन तुम्हें एक ही काम करना है, 25 बार, हर बार 10 सेकंड के लिए अपने को केवल आत्मा देखना है। 10 सेकंड देखो मैं चमकती हुई मणि यहाँ हूँ। एक ही दिन में योग लगने लगा। किसी को स्वमान का अभ्यास, किसी को ज्ञान चिंतन का, किसी को मुरली पढ़ने का, किसी को किसी विशेष धारणा पर ध्यान दिलाने की जरूरत होती है जो मनुष्य को पता नहीं चलता है। किसी एक कमजोरी के कारण प्रगति नहीं होती है, किसी में मैंपन ज्यादा होता है, दिखावा ज्यादा होता है, समर्पित भाव नहीं होता, इसलिए उन्नति नहीं होती। तो ये हमें परख लेना होता है कि कौन व्यक्ति, कौन आत्मा कैसी है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। जो ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते लेकिन मैं बहुत परेशान हूं, ऐसे व्यक्ति को क्या समझाया जाए? उसकी परेशानी का कारण पूछ लिया जाए। भगवान को नहीं मानता तो अपने को तो मानेगा कि तुम आत्मा हो। उसको बार बार ये अभ्यास सिखा दो कि वो अभ्यास करे, मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ। बाकी आप जानते ही हैं, आत्मा का अभ्यास सिखाने से धीरे धीरे उसकी परेशानी कम होगी, और शिव बाबा को तो उसको मानना ही है, जाएगा कहाँ। जिसको एक प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर मुझे कोई अनुभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति आपके पास आ गया जिसे ने सुनाई देता, न वो बोलता, न उसे दिखाई देता, उसको ज्ञान कैसे दिया जाए। भाई मेरे को भी ऐसा अनुभव नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी, मुझे इसका उत्तर मुश्किल है। फिर भी कहीं कहीं ऐसे भाई आए हैं, लेकिन तीनों ही बात हो ऐसा तो कोई नहीं है। कम से कम या तो देखता है, सुनता बोलता नहीं तो देखता जरूर है, या देखता नहीं तो सुनता जरूर है। अगर तीनों ही किसी में ना हो तो भाई उसको योगी बनाना तो श्री बाबा का ही काम हो सकता है। रेकी हीलिंग के बारे में पूछा, आप सब में से कई जानते होंगे, अभी भारत में और सारे संसार में रेकी का प्रयोग बहुत चला, जो हाथ छूकर बीमारियां ठीक करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कई बहनें ऐसा सोच लेती हैं कि ये हमारे योग से विपरीत चीज है। ये तो एक लौकिक विधि है बीमारियों का इलाज करने की, और ऐसी विधियां बहुत सारी आजकल संसार में निकल रही हैं। प्राणी खीलिंग है, जैसे एक्यूप्रेशर निकला, एक्यूपंचर निकला, तो इसमें हमारे ज्ञान योग से कोई विरोधाभास नहीं होता। जो इसको करता है उसको करने देना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसको सीखा है, सभी डॉक्टर्स ने एक बार सीखा था। तो वास्तव में ये योग के ही छोटे हिस्से हैं, बल्कि हम इसमें और भी कुछ जोड़ देते हैं। वो ऐसा विचार करते हैं कि ऊपर से एनर्जी आती है उनको, यहाँ से प्रवेश करती है, हाथ से निकलती है, हम इसको योग से जोड़ लें। बाबा से आती है, आत्मा में प्रवेश करती है, आंखों से निकलती है, हाथों से भी निकलती है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। मैं जब भी योग लगाती हूँ तो थोड़ी सी देर के बाद सात रंग के रूप में ऊपर से नीचे आ रही हैं वाइब्रेशंस, ऐसा दिखता है। कभी मेरे अंदर से वृत्ताकार कलर में बाहर निकल रहे हैं, ऐसा क्यों दिखता है? बुराई तो इसमें कुछ नहीं है, परंतु कुछ हमारे अनुभवों का कारण हमारे पूर्व जन्मों में की गई भिन्न भिन्न साधनाएं होती हैं। हमने पूर्व जन्मों में भिन्न भिन्न जो साधनाएं की होती हैं, उससे कभी कभी इस तरह के कुछ अजीब से अनुभव आत्माओं को होते रहते हैं, जो थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। सूर्य वंश जब चंद्र वंश में आते हैं तो दो कला कम हो जाती हैं। वो दो कला कौन सी हैं? बिल्कुल सिंपल उत्तर है कि ये कलाएं वो नहीं है जो 16 हम गिन लें, लिखने की कला, बोलने की कला, डांस करने की कला, हंसने की कला, रोने की कला, वो सब नहीं। कला का यहाँ अर्थ है 16 कला, अर्थात हमारी संपूर्ण पावर, उसको 16 के रूप में नाप दिया गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि ये दो कलाएं कम हो गई, वहां आत्मा की शक्तियां कुछ कम हो गई, क्योंकि हमने 8 जन्मों में उनको यूज कर लिया। क्या चींटी मच्छर आदि में भी आत्मा होती है? सोचते इसीलिए ना, उनको मारे या नहीं मारे, पाप तो कहीं नहीं हो जाएगा। जैनी लोग नहीं मारते, बेचारों को काटते रहते हैं। मैं उन्हें कहा करता हूँ कि तुम मच्छरों को तो दुख नहीं दे रहे, पर अपने को तो बहुत दे रहे हो, क्या ये अलाउ है कि हम अपने को दुख दें और मच्छरों को सुख दें? कि तुम काटते रहो, हमारा भोजन खाते रहो और मोटे होते रहो, इसकी तो जरूरत नहीं है। तो इन सब में आत्मा है, लेकिन बाबा ने इसका उत्तर दिया था कभी साकार मुरली में, जो रिपीट होकर तो नहीं आ रहा है। आत्माओं की ये कैटेगरी अलग अलग होती है। मनुष्य आत्माएं मोस्ट पावरफुल, बुद्धि मन संस्कार उनमें बहुत श्रेष्ठ जो हम जानते हैं, और इन सब में बहुत थोड़ा अंश मात्र। रही पेड़ पौधों की बात, ये प्रश्न आप सबसे पूछा जाता होगा, हमसे पूछा जाता है कि क्या पेड़ पौधों में आत्मा है? पेड़ पौधे क्योंकि प्रकृति से हैं, प्रकृति जड़ है, उनमें आत्मा नहीं होती। लेकिन क्या होता है? वो बढ़ते हैं, आजकल रिसर्च हुई, वो फील करते हैं, वो रोते हैं, वो भयभीत होते हैं। ये सब फीलिंग्स आजकल वैज्ञानिकों ने जान ली हैं कि पेड़ पौधों को होती हैं। मेरा ऐसा मानना है, ये एक विचार है केवल, ये कितना सत्य है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रकृति से हम सभी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेती है, तो हम चेतन आत्माओं के वाइब्रेशंस क्योंकि पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, वही रिफ्लेक्ट होते हैं बाद में, उसी की अनुभूति होती है। आत्मा उनमें नहीं होती है। कलयुग के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, अब ये तो गिनना पड़ेगा। अभी फिर से गिनती होगी, लेकिन हो चुकी है, अभी तो 7-8 साल बाकी हैं। बहुत सी आत्माएं बिना शरीर के भी भटक रही हैं, और 6 अरब से ज्यादा संख्या तो हो ही चुकी है, आप सब जानते हैं। और मैं अपनी एक बात कहूं, इस पे वाद विवाद कोई ना करे, मुझे बहुत स्पष्ट सा याद है, जब 64 में मैं पहले ज्ञान में आया तो मैंने पढ़ा था मुरली में कि सारी आत्माएं 7 अरब हैं, 7। तब संसार की आबादी 2.5 भी नहीं थी, तो मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया था। पर अब ये बात जचती है, क्योंकि 6.25 अरब तक पहुंच चुकी है। बहुत सी आत्माएं अंतरिक्ष में भटक रही हैं, और बहुत आत्माएं अभी आ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि मैंने जो पढ़ा था वो बिल्कुल ठीक है। कुछ ने पूछा एक प्रश्न, जनरल मैं उत्तर दे दूं कि पशु पक्षियों की आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद कहां जाती हैं। हंसने की बात है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हम सब जानते हैं, परम धाम में सबसे ऊपर रहते हैं बाबा, फिर अष्ट रत्नों की आत्माएं, फिर फिर उनसे नीचे नीचे की मोस्ट पावरफुल, सबसे अधिक पवित्र आत्माएं ऊपर, और साधारण छोटी क्वालिटी और कैटेगरी की आत्माएं नीचे, जहां मनुष्य आत्माओं की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद जीव जंतुओं की आत्माओं का निवास होता है। आपको चाहे तो जाकर देखाना, ठीक है, किसी को विश्वास न हो तो देख लेना, जाकर रहती वही है, क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो यहाँ कहाँ रहेगी, तो ऊपर कोई उड़ के जाती है, जहां तक उसकी शक्ति उसको उड़ने देती है, उसके बाद जाके आत्माएं वहां ठहर जाती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में, आप में से बहुतों ने सुना होगा, 14 लोक वर्णन किए गए हैं, 14। तो ये अलग अलग आत्माएं, क्योंकि जैसे अलग अलग सेक्शंस में रहती हैं मनुष्य आत्माएं, वैसे ये जानवरों की आत्माएं भी संभव हैं अलग अलग सेक्शंस में निवास करती हों। ध्यान में जाने वाली बहनें केवल ब्रह्मा बाबा को देखती हैं, विष्णु और शंकर को क्यों नहीं देखती, क्या वे सुख संवतन में नहीं है? शुरू में तो ध्यान में जाने वाली बहनें ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को ही देखती थी, पर जैसे जैसे ज्ञान स्पष्ट हुआ, ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु की अलग आत्मा नहीं है, क्योंकि विष्णु तो 2 का स्वरूप है ना, 2 आत्माएं थोड़ा ही होंगी, वो तो एक स्वरूप दिखाया गया है, और शंकर भी कोई अलग से आत्मा नहीं है, हमारी अंतिम तपस्वी स्वरूप की यादगार है। इसलिए देखें या ना देखें, वो बाबा चाहे तो दिखा दे कि तुम्हें ऐसी तपस्या करनी है और ये तुम्हारा लक्ष्य है। फिर प्रश्न आया है कि मकड़ी मच्छर चूहे आदि को दवाइयों से मारने से क्या पाप लगता है? भाई हमें भी मारना पड़ता है, तो हम सोचते हैं पाप लगे या ना लगे, कम से कम ये हमें तंग तो ना करें। अब मच्छर हमारे यहाँ तो ज्ञान सरोवर जंगल में है, मच्छर इतने हो जाते हैं कभी कभी कि सारा बाथरूम मच्छरों से भर जाता है, अब उन्हें मारे नहीं तो क्या किया जाए। इसलिए पाप तो निश्चित रूप से है, पर इतना छोटा नेग्लिजिबल नगण्य पाप है, इसलिए उसके बारे में हमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। जो पद कल पहले मिला है वही मिलना है, फिर बाबा ये क्यों कहता है कि जो पद चाहो प्राप्त कर सकते हो? ये तो हमें ज्ञान है कि पद वही मिलेगा जो हमें मिलना है कल पहले है। पर एज ए टीचर होने के नाते, सुप्रीम टीचर अपने स्टूडेंट्स को बार बार प्रेरित करता है कि तुम आगे बढ़ो, वो ये तो नहीं कहेगा ना कि तुम्हें यहीं तक जाना है इसलिए ढीले ढीले चलो, ये टीचर नहीं कहा करता। जब टीचर देखता है कि एक स्टूडेंट बहुत कमजोर है, उसको भी वो उमंग दिलाता है कि नहीं मेहनत करो तुम पास हो जाओगे, तो एज ए टीचर बाबा ये सब कहता है। श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, जब वो जन्म लेगा सुख संवतन रहेगा या नहीं, बाबा हमें अंत में कैसे टचिंग कराएगा। श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बहुत तो कोई इच्छा है, अब बाबा से तो गुलजार दादी पूछ कराए, ये प्रश्न आप उनसे पूछ लेना जब क्लास कराएंगे वो, तो श्री कृष्ण कब जन्म लेगा, क्योंकि उसकी ट्रेन काफी लेट होती जा रही है। आजकल ट्रेन लेट होती है ना, बारिश बहुत होती है तो ट्रैक्स खराब हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। बाकी जब श्री कृष्ण जन्म लेगा तो सूक्ष्म वतन का पाठ समाप्त हो चुका होगा, क्योंकि जब आत्माएं ऊपर से नीचे आने लगती हैं तो सूक्ष्म वतन का रोल नहीं रहता है। टचिंग बाबा कैसे कराएगा, ये तो जैसे जैसे हमारी बुद्धि स्पष्ट होगी, रिफाइन होगी, पवित्र होगी, व्यर्थ से मुक्त होगी, तो स्वतः ही हमारी बुद्धि में वो विचार आते रहेंगे। हमें यह मालूम हुआ था, हम यही अपनाते हैं कि जब तक कोई स्टूडेंट अच्छी तरह धारणाओं में न चले तब तक उसका धन स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो पार्टी हम शिविर में लाते हैं वे तो विकारी रिसने वाले होते हैं, तो यज्ञ में करके भी जाते हैं तो क्या उनका पैसा शुद्ध है, देते हैं उनके ऊपर खर्च होता है, पर क्या ये उनकी पवित्रता है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा 84वां जन्म है, पर दादी चंद्रमणि और जगदीश भाई का अब कौन सा जन्म है, वे 83वें में थे या 84वें में थे, क्या हुआ ये रहस्य बताएं। देखिए धन की बात तो ऐसी है कि संपूर्ण पवित्र धन, तो संपूर्ण पवित्र धन तो कलयुग के अंत में शायद बड़ा मुश्किल है, इसलिए देने वाले की भावनाएं यदि अच्छी हैं, यदि उसने ज्ञान लिया है, हमसे सेवा ली है ना, उसने हमने उसकी सेवा की, उसको यहाँ सुख शांति की अनुभूति हुई है, उसने कुछ यहाँ से पाया है, ऐसे नहीं कि वो ऐसा ही है, उसने कुछ पाया है, इसलिए उसका कुछ स्वीकार करने में हर्जा नहीं है। बाबा ने इस 84वें और 83वें जन्म का उत्तर दे दिया है व्यक्त में। अंग्रेज भाई बहनों ने ये प्रश्न बाबा से पूछा, एक बार क्लास में ही पूछा है, बाबा ने कहा ये एक ही अलौकिक जन्म के दो हिस्से हैं, 84वां ही जन्म है, लेकिन जैसे हमारा 84वां जन्म भी तो शारीरिक रूप से तो जन्म नहीं है ना, अलौकिक जन्म है, ऐसे ही एक अलौकिक जन्म के ये दो पार्ट हैं कुछ आत्माओं के। ज्ञान अच्छा लगता है, सेवा अच्छी लगती है, परंतु यह ज्ञान शिव बाबा ने दिया यह निश्चय कैसे बैठाएं, ये प्रश्न पूछ रही है बहन जी। 7 डेज कोर्स करने के बाद वे रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, तो इसमें हमारी क्या कमी है और कैसे प्रेरित करें कि वो रोज ज्ञान सुने। देखिए इसमें हमारी कोई कमी नहीं होती, हम तो अब सभी बहने एक साल में 100 को 200 को 500 को सेंटर्स पे कोर्स होते ही हैं, तो बाबा ने ये गति बता ही दी है, इसमें हमारी गलती कुछ नहीं। जिसका जिस समय पर पार्ट होगा वो आत्माएं आ ही जाएंगी, लेकिन हमें अपनी ओर से ये करना चाहिए कि स्वमान में स्थित होकर आने वालों को अच्छा अनुभव कराएं, सूक्ष्मता से कोर्स दें ताकि आने वाले जल्दी जल्दी रेगुलर हो सकें। लेकिन ये केवल हमारे ही ऊपर निर्भर नहीं है, ये उनके भाग्य पर भी निर्भर है। बहुत सारे प्रश्न हैं ये, और एक प्रश्न इसमें बहुत ही गहरा है। इसने एक प्रश्न हंसी का पूछा है कि जानवरों का परमपिता कौन है। मेरे से भी एक ने पूछा था ऐसे ही डायरेक्ट, तो मैंने कहा वो तुम ही हो। फिर उसने कहा कैसे हूं मैं, तो मैंने कहा जैसे हमारा परमपिता शिव बाबा इसलिए है, उसने हमें जन्म तो नहीं दिया लेकिन उसने हमें प्योरीफाई किया है ना, पतित से पावन बनाया है, एडॉप्ट किया है, इसलिए वो हमारा परमपिता। तो हमारे वाइब्रेशंस जानवरों को प्रकृति को पावन बनाते हैं, इसलिए तुम उनके परमपिता हो गए। तो जो जिसका कल्याण करे वो उसका पिता हो गया ना। पशु पक्षियों के घर की बात आ गई। ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब 84 जन्म लेती है तो शंकर की आत्मा कितने जन्म लेती है, तो शंकर की आत्मा होती ही नहीं। धर्म पिताओं की शरीरों में दो आत्माएं होती हैं, जब वो शरीर त्याग करते हैं तो दोनों आत्माएं एक ही साथ फिर पुनर्जन्म लेती हैं, अलग अलग समय पर पुनर्जन्म लेंगी। ये जरूरी नहीं जब उसने त्याग किया हो तभी उसने भी जन्म लिया हो, दोनों की गति अलग अलग हो सकती है। आत्मा किस तत्व से बना हुआ है? आत्मा तत्वों से बना हुआ नहीं होता। अभौतिक इसको कहते हैं, इसलिए ये प्रश्न ही नहीं है। पशु पक्षियां कितनी योनियां धारण करते हैं? ये प्रश्न काफी गुह्य है और ये भी शिव बाबा से ही पूछने का है। जैसे हम सब 84 जन्म लेते हैं अधिक से अधिक, तो मच्छरों के कितने जन्म, गाय के कितने, भैंस के कितने, ये है तो गुह्य प्रश्न, परंतु इसका उत्तर भी इतना सहज नहीं है और शायद बाबा भी न बताए या बताएगा, पूछ लेना। परम धाम कितनी माइल दूर है? वेरी गुड क्वेश्चन। अब कोई ऐसा पैमाना वैज्ञानिकों ने नहीं निकाला है जिससे परम धाम की लंबाई को नापा जा सके। बहुत सारे जो तारे हैं और ग्रह हैं उनकी दूरी को नापने के लिए वैज्ञानिक कह देते हैं इतने हजार लाइट ईयर्स। सुना है जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश कितना, एक सेकंड में या एक मिनट में 1,86,000 किलोमीटर पहुंचता है प्रकाश, तो बहुत लंबा चौड़ा मानते हैं, इसलिए इसको इन्फिनिटी कहेंगे, अनंत, जिसको नापा नहीं जा सकता है। श्री कृष्ण का जन्म कब और किस स्थान पर होगा? ये मैंने बता दिया है कि ये एक प्रश्न आया है कि सतयुग में योग बल से संतान कैसे उत्पन्न होगी। निश्चित रूप से इसका उत्तर सभी जानना चाहते हैं, आप भी और हम भी, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम प्रश्न पूछने वालों को कुछ बहुत अच्छा उत्तर दे सकें। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छा इसका उत्तर बताया है, बिल्कुल कन्विंसिंग है, बहुत सुंदर है। हमारे शरीर की शक्तियों की दो गति होती हैं, ऊर्ध्व गति अधोगति, ऊपर की ओर नीचे की ओर। योगियों की शक्तियों की गति ऊर्ध्व गति होती है, विकारी मनुष्यों की शक्ति की गति अधोगति होती है। योग देवता, उनको हम योगी भी कह सकते हैं यद्यपि वो योग अभ्यास नहीं करते, उनके शरीर में शक्तियों की गति ऊपर की ओर होती है। सभी ग्लैंड से, ग्रंथियों से शक्तियां निकलते निकलते ब्रेन में पहुंचती है, सूक्ष्म रूप से वास करती है ब्रेन में। और उसने बताया कि जैसे जब किसी की आंखें खराब होती है ना, आंखें दुखनी आ जाती हैं, तो डॉक्टर कहते हैं ना दूसरे को देखना नहीं, नहीं तो वो जो वायरस हैं दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे, उसकी आंखें भी दुखनी आ जाएंगी। ऐसे ही वो शक्तियों की वाष्प आंखों से आंखों में ट्रांसफर होके गर्भ धारण कराती है। बहुत ही अच्छा ये उत्तर था। यदि हम ये लक्ष्य मेडिकल साइंटिस्ट को दें, वो इस पे रिसर्च करें, तो निश्चित रूप से वो किसी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ऐसे ही एक उत्तर और एक डॉक्टर ने हमें दिया था, जो ज्ञान के डॉक्टर हैं और इस बात पर बहुत चिंतन करते आते हैं, लेकिन ये ऐसी बातें हैं कि इस पर चिंतन और डिस्कशन बहुत कम होता है। उसने बताया कि फीमेल बॉडी में ही दोनों तरह के जीन्स होते हैं और एक विशेष आयु पर आकर उन दोनों का मिलन फीमेल बॉडी में ही हो जाता है, गर्भ धारण हो जाता है। ये सूक्ष्म बातें हैं क्योंकि आजकल के मेडिकल साइंटिस्ट के पास ये लक्ष्य नहीं है कि वो इस तरह का चिंतन करें, इसलिए इसकी रिसर्च नहीं हो रही, लेकिन यदि किया जाए तो इस पर अच्छी जानकारी हमें मिल सकती है। ये दो बातें मैंने आपको बताई। कल बताया था कि विल सोल्स का कार्य बाबा पर छोड़ो, आज कहते हैं शक्तियों का कार्य है, दोनों में क्या अंतर है? बड़ा प्रश्न है। अब बाबा पे तो छोड़ के देख ही लिया है, और बाबा पे छोड़ दिया है हमने, और बाबा ने हमें उसके रिटर्न में तरीके बता दिए हैं कि इस तरह से तुम करो, क्योंकि बाबा पर छोड़ना और अपने कर्तव्य करना इन दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए। जैसे हम कुछ समस्याओं के लिए कह देते हैं कि भई ये समस्या बाबा पर छोड़ दो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि समस्या बाबा पर छोड़ने के बाद फिर हम कुछ प्रयास न करें। बाबा पर छोड़ने का अर्थ है कि हमें विश्वास हो जाता है कि अब ये बात हल हो जाएगी, हमारा मन शांत हो जाता है। जब कोई आत्मा कोमा में रहती है उस समय उसकी आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा शरीर में होती है तो उस समय क्या करती है? कोई कोई कोमा से फिर वापस आ जाते हैं तो कुछ नहीं कह पाते, क्यों? कोमा स्टेज में आत्मा प्रकाश में मन बुद्धि संस्कार क्या काम करता है? देखिए, कोमा में रहने का अर्थ है, वैसे तो कोई डॉक्टर इसका उत्तर मेरे से अच्छा देगा, कोमा में रहने का अर्थ है कि आत्मा का कनेक्शन ब्रेन के कुछ केंद्रों से कट गया है। आत्मा वहां रहती है, ब्रेन की स्थिति फिर से ठीक होने पर कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है। कई बार जब हम योग लगाते हैं तो आधा योग अच्छा लगता है, लेकिन बाद में व्यर्थ संकल्प बीच में आकर योग को तोड़ देते हैं, फिर योग लगता ही नहीं और मायूसी सी आ जाती है। ऐसे समय में यदि संभव हो तो उस स्थान से थोड़ी देर के लिए उठ जाना चाहिए ताकि विचार बदल जाएं, क्योंकि कभी कभी किसी स्थान पर भी निगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। ये भी संभव है कि हमारे मन में कभी किसी निगेटिविटी का फोर्स आ गया हो, तो इन सब से बचने के लिए बाबा ने भिन्न भिन्न तरीके अपनाए हैं। तो अब ये प्रश्न तो बहुत हैं, दूसरी क्लास में इनका हल हो जाएगा। ओम शांति। क्योंकि धन्यवाद आप सबके प्रश्नों के लिए।